नमस्कार आदाब श्रोताओं, मोबाइल वाणी के बेहद लोकप्रिय और खास कार्यक्रम खबरें जरा हटके में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करते हैं वैसे मुद्दों के बारे में जिससे आपकी जिंदगी का सीधा सरोकार है, वैसी खबरें जो जिंदगी की आपाधापी में हमसे छूट जाती हैं या खबरों की सुर्खियां नहीं बन पाती। तो आइए सुनते हैं खबरें जरा हटके।
दोस्तों, मैं दीपक और मैं आज आपको जानकारी दूंगा, भारत में दस्त से होने वाले शिशु मृत्यु दर में 52% गिरावट। दस्त एक ऐसी बीमारी है जिसे साफ सफाई और सुरक्षित पेयजल के माध्यम से आसानी से रोका जा सकता है। 2015 तक एक दशक में दस्त से निपटने के लिए भारत के प्रयासों में सुधार हुआ है। 4 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु में 52% की गिरावट आई है, लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य के आंकड़ों के मुताबिक 9.2% दस्त का प्रसार उच्च रहा है। शिशु मृत्यु दर में सुधार के बावजूद अभी भी 5 साल से कम उम्र के भारतीय बच्चों में मौत के प्रमुख कारण दस्त रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के मुताबिक 2015 में रोजाना 321 बच्चों की मौत दस्त के कारण हुई है। यह विश्व स्तर पर कुपोषण का एक प्रमुख कारण भी होता है। यहां तक कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में होने वाली मृत्युओं में गिरावट आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दस्त के साथ 38% से अधिक बच्चों को लगातार भोजन और मौखिक डिहाइड्रेशन प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि 31% बच्चों को तरल पदार्थ की सामान्य मात्रा प्राप्त हुई है। यह आंकड़े एक दशक पहले 37% से ज्यादा है। मार्च 20, 2018 के अनुसार आंकड़ों से पता चलता है कि पीने का पानी और स्वच्छता मंत्रालय ने स्वच्छ भारतीय अभियान के तहत लक्षित 12 मिलियन ग्रामीण भारतीय परिवारों में से 52.16% परिवारों के लिए शौचालय का निर्माण किया गया है।
मैं मधु खबरें लेकर आई हूं, प्राथमिक शिक्षा खर्च में गिरावट का प्रभाव गुणवत्ता पर, इस विषय पर। साक्षरता और शिक्षा के मामले में भारत की गिनती दुनिया के पिछड़े देशों में होती है। अगर हम अपने देश की तुलना आसपास के देशों से करें तो चीन, श्रीलंका, म्यांमार, ईरान से भी पीछे हैं। हालांकि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का वादा संविधान में किया गया है। मुख्यतः प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर मध्यम वर्ग का एक बड़ा हिस्सा अपने बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा दिलाने के पक्ष में था, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों से निकालकर प्राइवेट स्कूलों में दाखिला करवा दिया। यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारी भी राज्य और नगर निगम के स्कूलों से दूरी बनाने लगे थे। केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना सरकारी राज्य सेवा कर्मियों के बच्चों के लिए और सैनिक स्कूलों की स्थापना मिलिट्री अफसरों के बच्चों के लिए हुई। इस वजह से सरकारी स्कूल गरीबों और अशिक्षितों के बच्चों का सहारा बन गए, जहाँ उन्हें नौकरशाही और शिक्षक संघों की दया पर रहना पड़ता था। इसके परिणाम स्वरूप इन स्कूलों के लिए स्थापित मानकों, पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता और प्रासंगिकता, विद्यार्थियों की उपलब्धियों का निरीक्षण का विकास थम गया। आज भारत में साक्षरता पहले से कुछ बढ़ी है। अंग्रेजों के शासन के अंत तक होने वाली यानी 1947 में भारत की साक्षरता दर केवल 12% थी, जो 2011 में बढ़कर 74.4% हो गई। पहले से 6 गुना अधिक, मगर विश्व की औसत शिक्षा दर से काफी कम। हालांकि साक्षरता के लिए सरकार काफी सक्रिय रही है, समय समय पर कई तरह की योजनाएं लाती रही है। इसके बावजूद 1990 में किए गए अध्ययन के मुताबिक 2060 से पहले भारत विश्व की औसत साक्षरता दर को नहीं छू सकता, क्योंकि 2001 से 2011 तक के दशक में भारत की साक्षरता दर में वृद्धि केवल 9.2% रही। प्राथमिक शिक्षा की हालत में सुधार के लिए आने वाले सालों में भारत को कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। खासकर शिक्षा को सार्वभौमिक अधिकार बनाने वाली योजनाओं की सफलता को लेकर कई स्तरों पर संशय कायम है। भारतीय शिक्षा की स्थिति सुधारने के लिए भारत दुनिया के कई देशों से आर्थिक मदद लेता है, लेकिन वैश्विक मंदी के कारण अगले सालों में इसमें कटौती हो सकती है और इसका प्रभाव हमारे सर्व शिक्षा अभियान पर भी पड़ेगा।
तो दोस्तों, चलिए मैं किशन आपको ले चलता हूँ प्राथमिक शिक्षा खर्च में गिरावट का श्रम मूल्य के संकट से जूझती घरेलू कामगार महिलाओं के संबंध में। दोस्तों, घरेलू काम दुनिया के सबसे पुराने रोजगार के साधनों में से एक है। महंगाई और कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण महिलाओं को भी काम करना पड़ता है। महिलाओं में शिक्षा और कौशल की कमी के कारण इनके लिए सबसे आसान आजीविका घरेलू काम ही होता है और वे इसे करने को मजबूर भी होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक भारत में करीब 6 करोड़ घरेलू कामकार महिलाएं हैं। घरेलू कामकार महिलाओं के प्रति समाज का नजरिया अच्छा नहीं होता है। इनके काम को गरिमापूर्ण नहीं माना जाता है एवं उनके काम को अहमियत तक नहीं दी जाती है और उन्हें कामगार की जगह नौकर माना जाता है। ह्यूमन राइट्स वॉच की एक शोध के मुताबिक भारत में घरेलू नौकरों को भयंकर उत्पीड़न का सामना भी करना पड़ता है। महिला और बाल विकास विभाग ने फरवरी 2014 में राज्यसभा में बताया कि देश में घरेलू कामगार महिलाओं के साथ हिंसा के मामले बढ़े हैं और वर्ष 2010 से 2012 के बीच देश में घरेलू कामगारों के प्रति अपराध के 10,503 केस दर्ज हुए हैं। काम के दौरान इन स्त्रियों को अन्य कामगारों की तरह छुट्टी, मातृत्व अवकाश, बीमारी की दशा में उपचार, कानूनी सुरक्षा जैसी कोई भी सुविधा हासिल नहीं होती है। इन्हें कामगार की दर्जा नहीं दिया जाता है, इस वजह से उनका कोई एकसार और वाजिब मेहनताना ही तय नहीं होता। घरेलू कामगार महिलाओं को जो वेतन मिलता है वो देश में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम होता है, लेकिन जब तक घरेलू कामगार महिलाएं संगठित नहीं होगी और अपने हक की लड़ाई के लिए आगे नहीं आएगी, उन्हें वो सम्मान मिलना नामुमकिन है। फिर भी असली लड़ाई तो सामंती सोच के साथ है, जिसे खत्म कर अमीरी, गरीबी, मालिक, नौकर के भेदभाव को खत्म करना होगा। जब तक समाज में असमानता आएगी और इसके लिए समाज के सभी तबकों को प्रयास करना होगा।
तो दोस्तों, ये थी पिछले दिनों की कुछ खास खबरें। अगर आपके आसपास या आपके क्षेत्रों में भी कुछ ऐसी ही खबरें हैं जो जरा हटके हैं, तो हमें जरूर बताएं। अपने मोबाइल में नंबर 3 दबाकर और साथ ही इस कार्यक्रम को पसंद करने के लिए अभी दबाएं नंबर 5। तो सुनना न भूलें हर बुधवार और शनिवार शाम 4 बजे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम खबरें जरा हटके।